हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद आठवां अध्याय श्लोक संख्या 45, 46 और 47। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतीयुत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति, गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनं गौरंगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानो सूते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद आठवां अध्याय जिसका शीर्षक है महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित महाराज की रक्षा, श्लोक नंबर 45। कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सूत गोस्वामी कहते हैं, ताम् बाढमित्युपामन्त्र्य प्रविश्य गजसः वयम् स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णाराख्यानिवारितः ताम् बाढमित्युपामन्त्र्य प्रविश्य गजसः वयम् स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णाराख्यानिवारितः ताम् बाढमित्युपामन्त्र्य प्रविश्य गजसः वयम् स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णाराख्यानिवारितः श्लोक नंबर 46 व्यासाद्यैरीश्वरे हाख्यै कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधिप्तो पीतिहासहासै नाभुध्यत शुचार्पितः व्यासाद्यैरीश्वरे हाख्यै कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितोपितिहासै नाबुध्यत शुचार्पितः व्यासाद्यैरीश्वरे हाज्ञै कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितोपितिहासै नाबुध्यत शुचार्पितः व्यासाध्यैरीश्वरे हाज्ञै कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितोपीतिहासै नाबुध्यत शुचार्पितः व्यासाध्यैरीश्वरे हाज्ञै कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितोपीतिहासै नाबुध्यत शुचार्पितः श्लोक नंबर 47 आह राजा धर्मसुतः चिन्तयन् सुहृदां वदम् प्राकृतेनात्मना विप्रा स्नेहमोहवशं गतः आह राजा धर्मसुतः चिन्तयन् सुहृदां वदम् प्राकृतेनात्मना विप्रा स्नेहमोहवशं गतः आह राजा धर्मसुतः चिन्तयन् सुहृदां वदम् प्राकृतेनात्मना विप्रा स्नेहमोहवशं गतः। जैसा कि हमने कल पढ़ा कि कुंती महारानी ने जब अपनी अंतिम प्रार्थना भगवान के सामने रखी और भगवान को कहा कि श्री कृष्ण कृष्ण सखवेश्य ऋषभावनी दृक् राजन्य वंशदाना नपवर्क वीर्य गोविंद गोद्विज सुरारति हरावतार योगेश्वराखिल गुरु भगवन नमस्ते। इतना कहने के बाद सूत गोस्वामी ने कहा वृद्धयेतं कलपदये परिरोताखिल दया मंदं जहास वैकुंठो मोहयन्निव मायया। जब प्रथा ने भगवान की संपूर्ण प्रार्थना परिणता खिलोदय सारी की सारी भगवान की महानता भगवान का ऐश्वर्य भगवान का माधुर्य भगवान की करुणा भगवान के अवतार भगवान के आने का कारण सब अखिल उदय सब कुछ बता दिया। तो भगवान ने जब प्रथा की ये इतनी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं श्रवण की तो भगवान ने मंदम जहास वैकुंठ वैकुंठ अर्थात भगवान जो है वो मंद मंद मुस्काने लगे। सारी प्रार्थनाओं पर भगवान ने विचार किया और विचार करने के बाद भगवान के मुख कमल पर मंद मंद मुस्कान आने लगी और भगवान सोचने लगे उनकी प्रार्थनाओं के विषय में कि बुआ ने कितनी अद्भुत प्रार्थनाएं की हैं। एक तरफ तो वो कहते हैं कि आप रुक जाइए, आप मत जाइए, हम आपके बगैर मर जाएंगे, हम आपके बगैर जी नहीं सकेंगे, हस्तिनापुर का कोना कोना चप्पा चप्पा आपके बगैर उस प्रकार निर्जीव हो जाएगा जिस प्रकार आत्मा के बगैर देह निर्जीव हो जाता है, आप मत जाइए। कभी कहती हैं आप मुझे दुख दीजिए और ताकि आपका बार बार दर्शन हो, और फिर कहती हैं स्नेह पाशम एवं सिंधी, आप स्नेह का पाश तोड़ दीजिए, ना मेरा स्नेह मेरे पांडवों में रहे और ना ही यादवों में रहे। और फिर अंत में कहती हैं श्री कृष्ण कृष्ण सख विश्वेश भावनी, आप अर्जुन के सखा हैं, आप यादवों के कुल के कुलदीपक हैं। तो ये सब विपरीत भाव जब कुंती महारानी के हृदय में उत्पन्न हो रहे थे, और जब भगवान से वो इतनी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं कर रही थी तो भगवान कुंती महारानी के हृदय को पढ़ रहे थे, और जब उन्होंने पूरी अपनी प्रार्थना भगवान के सामने रखी तो भगवान मंद मंद मुस्काने लगे। मंदम जहास वैकुंठो, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, वो अपना हंसता हुआ मुख कमल किसी को दिखाते हैं, ये बहुत बड़ा वरदान है। शास्त्र कहता है कि दो वरदान भगवान के बहुत बड़े हैं, एक वो कि भगवान हंसते हुए किसी के ऊपर दृष्टिपात करें, ये एक भक्त के लिए एक साधक के लिए ये अपनी संपूर्ण साधना का फल है कि भगवान हंसते हुए उसकी ओर निहारे। और दूसरा जो उससे भी महान है वो क्या है, भगवान किसी साधक को उसकी साधना से उसके प्रेम से प्रसन्न होकर आलिंगन करें, इससे बड़ा और कुछ नहीं होता। तो भगवान का निहारना भी आलिंगन ही है एक तरह से। तो कुंती महारानी को भगवान ने हंसते हुए देखा और कहा बाढ़ है, ठीक है बुआ जी ऐसा ही होगा। बाढ़ का मतलब होता है स्वीकृति देना। कुंती महारानी ने भगवान से एक प्रार्थना की थी, श्लोक नंबर 42 में भगवान से कहा त्वयि मे अन्य विषया मतिर मधुपते सकृत रतिम उद्वहता दत्ता गंगे वोगम उदन्वती। मेरी एक इच्छा है कृष्ण कि आपके प्रति मेरा अनन्य प्रेम हो जाए, आपके अतिरिक्त मैं किसी और के विषय में ना सोचूं, कोई और व्यक्ति और कोई वस्तु मुझे आकर्षित ना करे, मेरी मति केवल आपके श्री चरणों में लगी रहे, और जिस प्रकार गंगा का प्रवाह बढ़ता है उसी प्रकार मेरी चेतना का प्रेम भी, मेरे हृदय का प्रेम आपकी ओर बढ़ता रहे। और भगवान ने कुंती महारानी की उस प्रेम भरी विनती को स्वीकृति देते हुए कहा ताम बाढ़ुपामित मंत्र्य ताम, यानी उन सबों को बाढ़ यानी स्वीकृत करता हूँ, इत यानी इस प्रकार उपामंत्र्य बाद में सूचित करके। जब भगवान ने कुंती महारानी को बोला हाँ अभी मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ, उसके बाद क्या किया प्रवेश गज सावयम, तो भगवान पुनः गज सावन मन हस्तनापुर के महल में प्रवेश कर गए। यहाँ पर भगवान की कृपा दृष्टि कृपा का प्रदर्शन हो रहा है। भगवान ने कहा बाढ़ हाँ बुआ मैं आपके अनन्य प्रेम को अपनी ओर आकर्षित तो कर लूंगा, परंतु भगवान अनंत कृपालु हैं, वो अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि कुंती महारानी ने बोल दिया कि कृष्ण हमारा स्नेह पाश काट दीजिए तो भगवान बोलेंगे कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारा स्नेह पाश काट देता हूँ, चलो ठीक है आपको अभी मेरे से प्रेम हो जाएगा तो अभी मैं जा रहा हूँ ओके गुड बाय, ऐसा नहीं है। भगवान इतने कठोर हृदय नहीं हो सकते, बस बोलें कि हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ, आपके बंधन को काट देता हूँ। लेकिन यहाँ पर भगवान के प्रेम के विषय में, भगवान के प्रेम का दर्शन हो रहा है कि इतना कहने के बाद भगवान पुनः रथ से उतर गए और प्रविश्य गज सावयम। हालांकि कुंती महारानी ने अंत में रुकने के लिए कहा नहीं था, पर फिर भी वो हंसते हुए रथ से उतरे और बोले, हम बुआ जी ठीक है, आपने जो अंतिम वर मांगा है वो तो मैं आपका स्वीकार करता हूँ, आपका प्रेम तो वैसे ही हमारे हृदय के हमारे आपके हृदय में तो वैसे ही हमारे लिए बहुत सारा प्रेम है, तो भी मैं आपको अपने अनन्य प्रेम का वरदान देता हूँ। इतना कहकर प्रवेश गज साहवयम और पुनः प्रवेश किया हस्तिनापुर में और कुछ दिन रहे वहाँ पर। कुछ दिन रहने के बाद फिर स्त्रियश्च स्वपुरम यास्यन, जितनी भी उस पूरा मना वो जो हस्तिनापुर की जितनी भी स्त्रियाँ थीं, जैसे कुंती महारानी, द्रौपदी महारानी और दी उत्तरा इत्यादि जितनी भी स्त्रियाँ थीं, उनसे भगवान ने फिर छुट्टी मांगी। बोला, अब आप मुझे जाने दीजिए, क्योंकि मैं आप सबके साथ तो कब से रह रहा हूँ, वहाँ पर मेरी माता देवकी मुझे कितना स्नेह से व्याकुल हो रही होंगी, मुझे याद कर रही होंगी, मेरे विरह में बहुत ज़्यादा दुखी हो रही होंगी, मेरी पत्नियाँ भी दुखी हो रही होंगी, तो अब आप सब मुझे छुट्टी दीजिए, मैं थोड़े दिन के लिए द्वारिका जाऊँगा, फिर वापस मैं आप लोगों के पास आ जाऊँगा। क्योंकि जब भगवान वापस आ गए थे ना, तो सब बहुत ज्यादा खुश हुए थे, जैसा लग रहा था जैसे सबके अंदर फिर से पुनः प्राण आ गए थे। और जब भगवान के विषय में, भगवान के जाने के विषय में सुनते थे तो उनको बहुत दुख होता था, तो भगवान उनको समझा रहे थे कि देखो आप भी तो मुझसे प्रेम करते हो, तो वो भी तो मुझसे इतना ही प्रेम करते ना, मेरे बगैर तो मेरी माता और मेरी पत्नियां सब कितना दुखी होती होंगी, तो मैं बस उनसे मिल के उनको भी थोड़ा स्नेह देकर फिर वापस आप लोगों के पास आ जाऊंगा। और स्त्रियां जो होती हैं वो दूसरी स्त्री का कष्ट सुनकर फौरन पिघल जाती हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ कृष्णा, आप भले जाइए पर वापस जल्दी आना। और सब स्त्रियश्च स्वपुरम यास्यन, जितनी भी स्त्रियां थी उनसे विदा ली वापस से। परंतु यहाँ पर और एक दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, प्रेमणा राज्ञानि वारितः, प्रेमणा अर्थात प्रेम से राज्ञा मतलब राजा द्वारा निवारिता रोके गए। अब जब स्त्रियों ने भगवान को छुट्टी दे दी, तो जो जब वो जाने लगे पुनः, तो जो राजा युधिष्ठिर हैं वो रोना शुरू हो गए कि नहीं नहीं कृष्णा, आप हमें छोड़कर मत जाइए, आप कुछ दिन यहाँ पर रहिए, आपके बगैर तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, पहले से ही मैं कितना दुखी हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कितना सब मैंने अपराध किया है, इतना बड़ा युद्ध हुआ है, आपके होने के कारण तो थोड़ा सा सुख मिल रहा है। बहुत बहुत प्रेम से, बहुत बहुत स्नेह से बहुत रोने लगे युधिष्ठिर महाराज, नहीं भैया नहीं, आप नहीं जाइए कृष्ण, आप चले जाओगे तो ऐसा लगेगा कि मैं प्राण हत्या कर दूं, मैं आत्महत्या कर दूं, क्योंकि मैं आपको देखकर ही जी रहा हूं, आप कुछ दिन बस थोड़े दिन और रहिए और थोड़े दिन के बाद फिर मैं आपको वापस से जाने दूंगा, आप कुछ दिन यहाँ पर रह जाइए, क्योंकि मैं अभी आपको जाने नहीं देना चाह रहा हूँ, बस थोड़े दिन आप यहाँ पर रुक जाइए। अनुवाद, इस तरह श्रीमती कुंती की प्रार्थनाएं स्वीकार करने के बाद भगवान ने हस्तिनापुर के महल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को अपने स्थान की सूचना दी, लेकिन उन्हें प्रस्थान करते देख राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक याचना की। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे कि जब भगवान ने द्वारिका जाने का निश्चय कर लिया तो कोई भी उन्हें हस्तिनापुर में नहीं रोक सकता था। भगवान ने निश्चय कर लिया है कि मुझे जाना है तो कौन रोक सकता है उन्हें, वो भगवान है। परंतु प्रेम विवश होई जग जाना। भगवान प्रेम से विवश हो जाते हैं, ये परमात्मा है, ये भगवान है, समग्र सृष्टि जिनके इशारे पर चलती है, वो प्रेम के बंधन में चलकर भी परमेश्वर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि रो रो के रोक दिया उनके प्रेमियों ने। तो यहाँ कुंती शिला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कोई भी उन्हें हस्तिनापुर में नहीं रोक सकता था, लेकिन राजा युधिष्ठिर का यह सरल अनुरोध कि वे कुछ दिन तक और रह जाए, बार बार बोल रहे थे बस थोड़े दिन के लिए आप रुक जाइए, कारगर सिद्ध हो गया। भगवान ने कहा चलो ठीक है मेरे भाई, आप इतना अनुरोध कर रहे हो तो थोड़े दिन और रुक जाता हूँ। इससे पता चलता है कि यार राजा युधिष्ठिर की शक्ति प्रेम युक्त स्नेह की थी, जिसे भगवान इनकार ना कर सकते। भगवान को कोई रस्सी से नहीं बांध सकता, भगवान को कोई कहीं भी किसी दूसरे यंत्र से कैद नहीं करता। भगवान को यदि कोई कैद किया जा सकता है तो प्रेमणा राज्ञा निवारितः, प्रेम के बंधन में आसानी से भगवान बंध जाते हैं। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान केवल प्रेम शक्ति से जीते जाते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं। वे अपने समस्त व्यवहारों में पूर्ण स्वतंत्र रहते हैं, लेकिन अपने शुद्ध भक्तों के प्रेम से अभिभूत हो जाते हैं। बाकी सब तो वो कार्य स्वतंत्रता से करते हैं, लेकिन जब सामने भक्त का प्रेम हृदय आ जाता है फिर वो विवश हो जाते हैं और वो वही करते हैं जो उनका भक्त चाहता है। भक्त नहीं चाहते थे, युधिष्ठिर महाराज नहीं चाहते थे कि कृष्ण जाए, तो फिर उनके हृदय की प्रेम भरी पुकार को शिरोधारी करते हुए भगवान ने अपने जाने का निश्चय पुनः कैंसिल कर दिया। और आगे सुत गोस्वामी बताएंगे कि भगवान के रुकने का वास्तविक कारण क्या था। क्योंकि भगवान को अपने परम प्रिय भक्त भीष्म के पास जाना था, तो अब चल चल के रुक ही गए। अब उनको ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी थी कि वो भीष्म पितामह की महानता को व्यक्त करना चाहते थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, आगे श्लोक नंबर 46 में सूत गोस्वामी कहते हैं, व्यासाधरीश्वरे हाज्ञे कृष्णेना बुध कर्मणा प्रबोधितो पितिहासे ना बुध्यत शुचार्पितः। व्यासाधरीश्वरे हाज्ञे, अब क्या हुआ कि भगवान तो रुक गए, परंतु युधिष्ठिर महाराज का शोक दिन ब दिन बढ़ने लगा। इतना रोते थे, बहुत ज्यादा रोने लगे और रो रो कर बहुत विलाप करने लगे। हर क्षण में युधिष्ठिर महाराज का शोक बढ़ने लगा और बार बार कहने लगे कि इतना बड़ा युद्ध मेरे कारण हुआ, इतनी सारी हत्याएं मेरे कारण हुई, मैं इतना बड़ा अपराधी हूँ, मुझे जीने का अधिकार नहीं है, मैं राज्य नहीं करूंगा, ये सारा राज्य तो मेरे अपने ही संबंधियों के रक्त से सना हुआ है, मैं इसका भोग नहीं कर सकता। दिन रात रोते रहते थे, इतना रोते थे कि उनका शोक समाप्त ही नहीं होता था। इसे यहाँ सूत गोस्वामी कहते हैं व्यासाधरीश्वरे हाज्ञे। व्यास आदि जितने भी दूसरे ऋषि मुनि थे, वेद व्यास जी, धौम्य ऋषि, ब्राह्मण जितने भी वहां पर आते थे ना हस्तिनापुर में, वो उन सब उन युधिष्ठिर महाराज को इतना समझाते थे, लेकिन फिर भी वो समझते नहीं थे। वो सारा दिन बार बार उनको समझा रहे थे। ईश्वरे हाज्ञे, यहाँ पर वेद व्यास जी कहते हैं व्यासाधरीश्वरे हाज्ञे, वो इसलिए समझाते, समझ नहीं रहे थे, वो उनकी बात सुन नहीं रहे थे। तो यहाँ प्रश्न उठता था कि बार बार उनको क्यों समझा रहे थे, क्योंकि वो ये समझते थे कि यही ईश्वर की इच्छा है कि युधिष्ठिर महाराज राज्य करें। अब उनकी भगवान की इच्छा होगी ना कि युधिष्ठिर महाराज राज्य करें, तभी तो भगवान ने ये इतना बड़ा युद्ध करवाया था। भगवान युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाना चाहते थे, तो सब ऋषि मुनियों की ये लगता था कि भगवान की इच्छा है, इसलिए वो जी जान से उनको समझाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु वो समझ नहीं रहे थे, क्योंकि ईश्वर की इच्छा ये थी कि वो समझे नहीं। इसलिए यहाँ पर आगे लिखा कृष्णेण अद्भुत कर्मणा, कि कृष्ण के कर्म तो अद्भुत है, कृष्ण कार्य ऐसे करेगा ना कि साधारण व्यक्ति चकरा जाएगा, समझ में कुछ नहीं आएगा। जैसे शिला श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि जैसे जब भगवान संधि दूत बनकर दुर्योधन के पास गए थे और दुर्योधन को इतनी अच्छी अच्छी बातें कहकर समझा रहे थे, मतलब सुलह कराने के लिए जो जो श्लोक प्रयुक्त किए जाते ना, जो जो बातें की जाती थी वो सारे बोल रहे थे, बोले थे आपको जैसे अच्छा लगता है ऐसे कीजिए, आप भले राज्य आप अपने पास रखिए, मैं समझाऊंगा उनको, आप खाली उनको 5 गांव दे दीजिए, थोड़ा सा तो उनके साथ थोड़ा सा ऐसे करो कि वो रह सकें, जी सकें, मतलब ऊपर ऊपर से इतना अच्छा अच्छा समझा रहे थे और भीतर से उन्हें समझने दे नहीं रहे थे। यानी ऊपर ऊपर से भगवान अपना कार्य कर रहे थे कि ठीक है मैं, और एकदम सही एकदम सुंदर शब्दों के साथ उनको समझा रहे थे, लेकिन हृदय से उनके अंदर परमात्मा की भांति बैठकर उनको विस्मृति प्रदान कर रहे थे कि नहीं आपको नहीं समझना है, खबरदार जो पांडवों को राज दिया एक सुई की नोक के बराबर भी राज्य नहीं देना, युद्ध होना चाहिए, युद्ध में उनको हराना चाहिए, ये उनके मन में। अब हृदय के अंदर भी परमात्मा, बाहर भी परमात्मा कृष्ण जो है वो उपदेश कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण अद्भुत कर्म, अद्भुत कर्म है कृष्ण के, तो ऋषि मुनि नहीं समझ पा रहे थे। एक यहाँ पर है, इसके 2 अर्थ हो सकते हैं कि ईश्वर आज्ञा, एक तो ये चाहते थे कि भगवान क्योंकि चाहते हैं कि हम इनको समझाएं और ये समझ जाएं, इसलिए वो उनको समझा रहे थे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो चाहते थे कि वो ना समझें लेकिन फिर भी हम समझाने का कर्तव्य करते रहें। अब भगवान की जो इच्छा है, भगवान के तो अद्भुत कर्म है, लेकिन वो भगवान और भक्तों के सेंटर का मामला है। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर कि व्यास इत्यादि सारे जितने भी ब्राह्मण है वो सब युधिष्ठिर महाराज को समझाते हैं, लेकिन जितना वो समझा रहे हैं उतना ही उनका शोक बढ़ रहा है। जैसे दुर्योधन को जितना समझा रहे थे उतना बेर बढ़ रहा था, उसी प्रकार से युधिष्ठिर महाराज को जितना जितना समझा रहे थे उन्हें और भी ज्यादा दुख हो रहा था, और भी ज्यादा शोक हो रहा था, और वो इतना ज्यादा शोक उनको उनका बढ़ रहा था कि वो सारा टाइम रोते रहते थे। अब भगवान ऐसा क्यों चाहते थे, भगवान के इतने अद्भुत कर्म हैं, तो भगवान के हर कार्य में कोई ना कोई रहस्य होता है, क्योंकि भगवान चाहते थे कि वो युधिष्ठिर महाराज को पितामह के पास ले जाएं और उनका उपदेश सुनाने के लिए। अब यहाँ पर जैसे स्टार्ट जब हुआ था युद्ध, तब युद्ध प्रारंभ होने से पहले अर्जुन को मोह हो गया और भगवान को कहने लगा नयोच्य इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णीं बभूयः, कि अब मैं लड़ाई नहीं करूंगा, आप क्या सोच रहे हो कि मैं अपने ही मित्रों को, अपने ही पितामह को, अपने ही गुरुओं को मारूंगा, नहीं गोविंद नहीं, मैं तो भिखारी बन जाऊंगा, भीख मांग के मैं भिक्षा करके अपना पेट पालूंगा, लेकिन फिर भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर भगवान ने गीता का उपदेश दिया, अर्जुन का बहुत बड़ा उपकार है हमारे ऊपर, जो अर्जुन मोह के, हालांकि भगवान के जो भक्त होते हैं, शुद्ध जो परिकर होते हैं उन पर कभी मोह नहीं होता, लेकिन ये अर्जुन का हमारे ऊपर उपकार है कि उन्होंने ऐसे मोह का प्रदर्शन किया, क्योंकि भगवान गीता का उपदेश देना चाहते थे अर्जुन के माध्यम से। उसी प्रकार आज युद्ध के अंत में महाराज युधिष्ठिर को शोक हुआ, और ये जो युधिष्ठिर महाराज का शोक है ना वो अर्जुन से बहुत बड़ा है, बहुत गहरा सदमा पहुंचा है उन्हें, अर्जुन से भी बहुत बहुत ज्यादा दुखी है। अर्जुन को तो ये दुख था ना कि सब मर जाएंगे, फ्यूचर में ऐसा होगा, मर जाएंगे, विधवा हो जाएंगे, वर्ण सकर होगा, पाप होगा सब, लेकिन ये तो इतने दुखी है, ये सब कुछ देख चुके हैं, वो सब हो गया है, सबकी हत्या हो गई, सब मर गए, सब विधवाएं हो गई, सब पूरा इतने सारे जीवों की मृत्यु हो गई मेरे कारण, तो उनको ऐसा लग रहा था कि विशाल युद्ध, विशाल हत्या का कारण मैं हूं, तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे। और प्रबोधितो पितिहास, प्रबोधितो यानी कि उनको ज्ञान दे रहे थे, जितने भी व्यास इत्यादि जितने भी ब्राह्मण थे वहां पर, जितने भी ज्ञानी लोग थे वो उनको ज्ञान दे रहे थे। और कैसे दे रहे थे? इतिहास है, इतिहास सुना सुना कर ज्ञान दे। जैसे यहाँ पर भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो फिर हम कैसे बताते हैं, मतलब जो बड़े लोग होते हैं वो बोलते हैं कि ये खाली आपके साथ थोड़ी हुआ है, इस संसार में जो भी आया है उसे एक ना एक दिन जाना होता है। फिर बताते हैं देखो वो कितना छोटा था, उसकी भी मृत्यु हो गई, उसका बच्चा कितना छोटा था वो भी मरा, और उसकी पति की भी डेथ हो गई। मतलब ऐसे से इतिहास बता बता कि फिर इतिहास बताने से क्या होता है, फिर उसका बल बढ़ता है कि हाँ उन्होंने भी तो जिया है ना, वो भी तो बर्दाश्त किए हैं। तो इस तरह से प्रबोधितो इतिहास है, उनको बहुत बहुत ज्ञान दे रहे थे, परंतु ना बुद्धि सुचार पिता, वो बिल्कुल समझ ही नहीं रहे थे, उससे उनको बिल्कुल संतुष्टि आ ही नहीं रही थी और वो और भी ज्यादा दुखी हो रहे थे। अनुवाद, अत्यधिक शोक में मग्न राजा युधिष्ठिर व्यास आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान कृष्ण के उपदेशों से तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना नहीं पा सके। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपने लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में मनुष्यों के सामूहिक रक्तपात से पुण्य आत्मा राजा युधिष्ठिर अत्यंत ही खिन्न थे। उस समय दुर्योधन सिंहासन पर आरूढ़ था और वह ठीक से शासन चला रहा था। इस तरह देखा जाए तो युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन न्याय की दृष्टि से युधिष्ठिर को सिंहासन पर बैठना था। सारी राजनीति का केंद्र बिंदु यही था और सारे विश्व के राजा तथा निवासी इन दो प्रतिद्वंद्वी भाइयों की लड़ाई में सम्मिलित हो गए थे। भगवान कृष्ण भी राजा युधिष्ठिर की ओर थे। महाभारत के आदि पर्व अर्थात 20 में कहा गया है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में 18 दिन में 64 करोड़ लोग मारे गए थे, कई लाख इधर उधर भाग गए थे। एक तरह से विगत 5000 वर्षों में यह विश्व का सबसे बड़ा युद्ध था। अब युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे कि सिर्फ मेरी कारण, मैं राजा बनना चाहता था, इसी के कारण ये युद्ध हुआ ना, वरना तो दुर्योधन वैसे भी राज्य तो कर ही रहा था, कोई ऐसा नहीं था कि हरुभरू मैं ही राजा राज्य बनूं, राज्य करूं, लेकिन मेरे कारण ही ये इतना बड़ा युद्ध हुआ है। तो फिर उनको ऐसा लगा था, अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि 64 करोड़ यानी 64 करोड़ लोग मारे गए थे, तो कितना बड़ा हत्या कितनी सारी हुई थी। तो युधिष्ठिर महाराज को बहुत दुख हो रहा था कि मेरे कारण इतनी सारी जानों की हत्या हुई है। महाराज युधिष्ठिर को मात्र सिंहासन दिलाने के लिए यह सामूहिक वध अतीव मन संतापी था। उसको खाली लग रहा था कि मैं राजा बनता उसके लिए 64 करोड़ लोगों की हत्या, कितना बड़ा ये दुख, हृदय को दुख देने वाली बात थी। अतएव व्यास जैसे मुनियों ने तथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इतिहासों यानी कथाओं के साक्ष्य से उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहा कि यह युद्ध न्याय संगत था, क्योंकि इसका कारण न्याय संगत था। लेकिन महाराजा युधिष्ठिर संतुष्ट नहीं हुए, यद्यपि उस समय के महान पुरुषों ने उन्हें उपदेश किया। यहाँ पर कृष्ण को अति मानवीय कर्म करने वाला कहा गया, लेकिन इस मामले में ना तो व्यास ही राजा युधिष्ठिर को सांत्वना दे पाए न ही कृष्ण। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि अति मानवीय कार्यकर्ता सिद्ध नहीं हो पाए? नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी विवेचना यह है कि भगवान ने ईश्वर के रूप में राजा युधिष्ठिर तथा व्यास दोनों ही के हृदय में स्थित होकर इससे भी अधिक अति मानवीय कार्य किया, क्योंकि भगवान की ऐसी इच्छा थी। राजा युधिष्ठिर के परमात्मा रूप में उन्होंने राजा को व्यास तथा स्वयं एवं अन्यों के शब्दों से आश्वस्त नहीं होने दिया, क्योंकि वे चाहते थे कि राजा मरणासन भीष्म देव से उपदेश ग्रहण करें। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि भगवान के कार्य अद्भुत हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, देखो भगवान भी उसको समझा रहा है लेकिन भगवान से नहीं समझ रहा है और भी भीष्म पितामह से जाके समझ गया, तो क्या भीष्म पितामह के पास भगवान से ज्यादा बुद्धि है, वो ज्यादा अच्छा समझा? नहीं, भगवान अपने भक्त की महिमा को बढ़ाना चाहते हैं। ये तो युधिष्ठिर महाराज को माध्यम बनाया है कि युधिष्ठिर महाराज के द्वारा ही आज महाभारत का शांति पर्व जो है उसका उद्घाटन होता है, जिसके द्वारा द्वादश महाजनों में से एक भीष्म पितामह का उपदेश हम तक पहुंचा है। तो ये भगवान की योजना थी, वो वेदव्यास जी के हृदय में भी बैठे हुए हैं, वो युधिष्ठिर महाराज के हृदय में बैठे हुए हैं, वेदव्यास जी के हृदय में बैठकर उनको समझा रहे हैं और युधिष्ठिर महाराज के हृदय में बैठकर उनको समझने नहीं दे रहे हैं कि, क्योंकि वो चाहते हैं कि राजा मरणासन भीष्म देव के उपदेश ग्रहण करें, जो भगवान के महान भक्त थे। भगवान चाहते थे कि अपने अंतिम समय में महान योद्धा भीष्म देव उनका साक्षात दर्शन करें और उस समय सिंहासनारूढ़ अपने पौत्र राजा युधिष्ठिर आदि को देखें और इस तरह वह शांतिपूर्वक मृत्यु को प्राप्त करें भीष्म पितामह की। ये प्रतिज्ञा थी कि जब हस्तिनापुर में बिल्कुल शांति हो जाएगी और उसका राज्य एकदम शुद्ध हाथों में चला जाएगा तब मैं मृत्यु को ग्रहण करूंगा, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो भगवान चाहते थे कि वो देखें कि उनके पौत्र राजा युधिष्ठिर अब राजा बने हैं और हस्तिनापुर सुरक्षित हाथों में आ गया है और अंतिम समय में अपने भक्त भीष्म पितामह को भगवान दर्शन देना चाहते थे। तो अब ऐसे ही चले जाते, दर्शन देते तो उनकी महानता तो नहीं बखान होती ना, लेकिन यहाँ पर ऐसी सिचुएशन भगवान क्रिएट करते हैं जिसके कारण भीष्म पितामह की महानता विश्व भर में, और उस समय जब भीष्म पितामह शिव शैया पे बैठकर लेटकर प्रवचन दे रहे थे तो संसार के सारे जितने बड़े बड़े विद्वान थे, प्रहलाद, वेद व्यास जी, उनके पुत्र सुखदेव गोस्वामी, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महामुनि, सब अपने अपने शिष्यों के साथ उनका प्रवचन सुनने के लिए आए थे। ऐसी महान मृत्यु जिसके सामने भगवान के दर्शन हो रहे हैं और वो वक्ता बनकर भगवान की महानता का गुणगान कर रहे हैं, ऐसी महान मृत्यु देना चाहते थे वो भीष्म पितामह को। इसे भगवान ने यह कार्य किया, अद्भुत कार्य किया। भीष्म ने पांडवों के विरुद्ध युद्ध करने के कारण तनिक भी प्रसन्न ना थे, क्योंकि सारे पांडव उनके पितृविहीन पौत्र ही तो थे, लेकिन क्षत्रिय लोग अत्यंत क्रूर होते हैं, अतएव उन्हें दुर्योधन का पक्ष ग्रहण करना पड़ा क्योंकि वे उसी के द्वारा पल रहे थे। इसके अतिरिक्त भगवान की यही इच्छा थी कि राजा युधिष्ठिर भीष्म देव के वचनों से सांत्वना पाए, जिससे दुनिया देख सके कि भीष्म देव ज्ञान में सबसे, यहाँ तक कि भगवान से भी बढ़कर थे। श्रील प्रभुपाद की जय हो। आगे सूत गोस्वामी कहते हैं, आह राजा धर्म सुत चिंतयन सुहृदां वधम प्राकृतेनात्मना विप्रा स्नेह मोह वशं गतः। आह राजन धर्मसुता, धर्मसुता अर्थात धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर महाराज ने ऐसा कहा। सुहृदां वदा, वो बहुत ज्यादा चिंतित थे क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि जितने भी सुहृद थे, मेरे मित्र थे, उनका वध हो गया है, मेरे कारण सब मर गए हैं, मैं कितना बड़ा अत्याचारी हूँ, मैंने कितनी सारी हत्याएं की हैं। तो उनको बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, वो बोल रहे थे मैं राज नहीं करूंगा, बिल्कुल साफ इनकार कर दिया, बोला आप क्या समझते हो अपने समस्त सुहृदों की मृत्यु का शोक मनाने के बजाय मैं राज्य करूंगा, आपको ऐसा लगता है मैं राज्य करूंगा ही नहीं। सारे जितने भी ब्राह्मण थे, भगवान को भी बोल दिया कि मैं राज्यवाज नहीं करूंगा, मैं खाली रोता था बस, कुछ भी नहीं करते थे युधिष्ठिर महाराज। प्राकृतेनात्मना विप्र, प्राकृतेनात्मना क्या मतलब होता है कि वो बिल्कुल भी आध्यात्मिकता पे चिंतन नहीं कर रहे थे, बिल्कुल भौतिकता में आ गए थे, सिर्फ शरीर और शरीर के संबंधों के विषय में विचार कर रहे थे। यहाँ पर हमें इस बात को गौर से समझना है कि भगवान का जो शुद्ध पार जो शुद्ध परिकर होता है वो कभी भी प्राकृतिक नहीं होता है, वो कभी भी भौतिकतावादी नहीं हो सकता है। लेकिन क्योंकि भगवान ऐसा चाहते थे इसलिए उनकी मति ऐसी भगवान ने, ये भगवान की एक लीला थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि युधिष्ठिर महाराज जो है वो प्राकृतिक आत्मना यानी कि अपनी आत्मा सिर्फ प्रकृति में ही देख रहे थे, भौतिकता में ही अपना आनंद ढूंढ रहे थे कि यहाँ पर अगर आनंद नहीं है तो फिर आध्यात्मिक आनंद कुछ सोचे, मतलब भगवान की ओर बिल्कुल देख ही नहीं रहे थे। भगवान समझा रहे हैं कि बड़े भैया देखो दुख करने की बात नहीं है, ऐसा तो होता है और ये सब न्याय संगत था, ऐसा ही होना था क्योंकि वो सब बहुत ज्यादा क्रूर थे और बहुत ज्यादा अधर्मी थे तो उनका तो वध होना था, और आपने तो और भी अच्छा किया सारे अधर्मियों का नाश किया। लेकिन भगवान की बात समझ ही नहीं रहे थे, क्यों? स्नेह मोह वशं गतः, क्योंकि स्नेह कर रहे थे, सारे अपने जितने भी परिवार के लोग थे उनके साथ स्नेह कर रहे थे और मोह का बंधन जो था उसमें बंध गए थे, उनके उसमें वशीभूत हो गए थे, इसलिए बहुत ज्यादा दुख कर रहे थे। अनुवाद, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों की मृत्यु से अभिभूत हो गए थे और सामान्य भौतिकता वाली मनुष्य की भांति शोक संतप्त थे। बस साधारण लोग जिस तरह शोक करते हैं ना, जिनको कोई भी ज्ञान नहीं होता है, ऐसे भौतिकतावादी की तरह जैसे किसी की मृत्यु हो जाए और किसी को कुछ पता ही नहीं हो, वो इतना रोए, उसको कुछ ना आत्मा के बारे में पता हो ना भगवान के बारे में पता, इस तरह वो साधारण भौतिकतावादी मनुष्यों की भांति शोक कर रहे थे। हे मुनियों, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर वो बोले, श्रील प्रभुपाद जी कहते, यद्यपि आशा की जाती है युधिष्ठिर सामान्य मनुष्यों की भांति शोक संतप्त नहीं होंगे, लेकिन भगवान की इच्छा ही कहें कि वे सांसारिक स्नेह के कारण मोहग्रस्त हो गए थे। जिस प्रकार अर्जुन मोहग्रस्त हुआ था, देखने वाला मनुष्य भली भांति जानता है कि जीव ना तो शरीर है न मन, अपितु भौतिक कल्पना से परे है। सामान्य मनुष्य हिंसा तथा अहिंसा को शरीर से जोड़ता है, लेकिन यह एक प्रकार का मोह है, ये शारीरिक बात नहीं है। वास्तव में भगवान ने भगवत गीता में बताया है कि जो आत्मा है उसका कभी वध नहीं हो सकता, न जायते मृयते वा कदाचिन नायं भूत्वा भवितावान भूया, अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। लेकिन सामान्य जीव जो होते हैं वो हिंसा तथा अहिंसा को शरीर से जोड़ते हैं, लेकिन यह एक प्रकार का मोह होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी वृत्ति के अनुसार कर्तव्य में बंधा हुआ है। क्षत्रिय को सही निमित्त के लिए विरोधी पक्ष की परवाह ना करते हुए युद्ध करना होता है। इस प्रकार कर्तव्य पालन करते हुए शरीर के विनाश से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह शरीर जीव का बाहरी पहनावा है। यह सब राजा युधिष्ठिर को ज्ञात था, ऐसा नहीं था कि राजा युधिष्ठिर महाराज को कोई ज्ञान नहीं था, ये सब जानते थे, लेकिन भगवान की इच्छा से वे सामान्य पुरुष के जैसे बने रहे। प्राकृति नात्मना विप्रा, ये जो प्राकृति वो इसलिए बने हुए थे भौतिकतावादी क्योंकि भगवान ऐसा चाहते थे, वो वास्तव में वो भौतिक व्यक्ति नहीं थे, वो सब कुछ जानते थे, उन्हें बहुत सारा ज्ञान था, लेकिन भगवान चाहते थे कि भीष्म पितामह के द्वारा ज्ञान उन्हें बताया जाए, इसलिए उनको अबोध बना दिया था। क्योंकि इस मोह के पीछे एक दूसरी बहुत बड़ी भावना थी कि राजा को भीष्म उसी प्रकार से उपदेश दे जिस प्रकार स्वयं भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था। जैसे भगवान ने जब अर्जुन मोह में गिर गया था वो भी केवल भगवान की इच्छा से, और आज भगवान की इच्छा से युधिष्ठिर महाराज को मोहपाश में भगवान ने बांध दिया था, ताकि वो चाहते थे कि भीष्म पितामह उनको उसी तरह से उपदेश दे जिस प्रकार भगवान ने अर्जुन को दिया था, और वो भगवान की बात को भी नहीं समझ रहे थे। तो हम सबका सौभाग्य है कि हम भीष्म पितामह के उपदेश को श्रवण करेंगे। कृपया साथ रहिएगा मेरे लिए, अवश्य प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अपनी साधना और सेवा को अच्छी प्रकार से कर सकूँ। हरे कृष्ण।